बेस्ड है कि कैसे इनके पीछे रशियन इंटेलिजेंस के बंदे लगे, कैसे इनको मरवाने की कोशिश की, कैसे इन्होंने ये फिर सरवाइव किया, इसका जो गुस्सा था बहुत ज्यादा उसको, और ये बचे। और अब ये किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका एक छोटा सा मैंने एक्सर्प्ट पढ़ा है, अभी मैं पूरी पढ़ूंगी इंशाल्लाह ये किताब, तो फिर मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। तो वो है, तो इसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि ये किस तरह चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रंप साहब के जमाने में भी बहुत ज्यादा शोर मचा था कि रशिया ने इंटरफेयर किया था इनके इलेक्शंस में, अलेजली अगेन, और क्योंकि ट्रंप साहब के ताल्लुकात थे रशिया के साथ। तो दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो हम एक साइड की स्टोरी देखते हैं, लेकिन कुछ और भी लीडर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत है, और पुतिन साहब तो बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, तो उनके बारे में ये किताब आई है, तो मुझे लगता है कि काफी सारे लोग पढ़ना शुरू करेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक की जी आज एक मीटिंग हुई है, और उसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मेलपास, और इसके अलावा IMF की जो MD हैं क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा, उन्होंने वो आज एक जगह पे बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि आने वाले दिन कैसे होंगे। तो वो कह रहे हैं जी कि ये जो फूड की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, और ये जो कंट्रीज अपने डेट्स पे नहीं कर सक रहे हैं, तो ये लो इनकम कंट्रीज के डेट्स जो हैं 60% तक को टच करेंगे, जिसकी के वजह पेंडेमिक और लॉकडाउन्स है। और वो कह रहे हैं जी कि इसमें जो इनके डेट्स हैं लो इनकम कंपनीज में 50% ऑफ देयर GDP तक को भी टच करेंगे, जो कि 2019 में अबाउट 44% थे। तो काफी जो है वो उनका ख्याल है कि डेवस्टेशन दुनिया में जो है वो आ सकती है। तो काफी इन्होंने आज ब्लीक पिक्चर पेश की IMF और वर्ल्ड बैंक ने, तो देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। ये कुंडूज का जो प्रोविंस है अफगानिस्तान के अंदर, यहां पे मजार शरीफ के ऊपर एक जो मॉस्क थी शेख देकान, उसके ऊपर आज ISIS ने जो है वो हमला किया है, और इसमें 12 लोगों की डेथ हो गई है, 58 लोग जो है वुंडेड हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक और भी किया था जो है एक हिडन बाइसिकल जो थी उसके अंदर 4 उसमें लोगों की डेथ हुई थी और 18 लोग हुए थे वुंडेड। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन जो है अफगानिस्तान के, वो कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंटली ISIL वाले, ये जो तालिबान की गवर्नमेंट है, इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे भी अपना जो ISIL वाले हैं उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया, और उसमें उन्होंने कहा जी कि कैलिफेट के जो सोल्जर्स हैं वो बूबी ट्रैप उन्होंने मस्जिद में लगाया, और जिस वक्त मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी, व्हेन इट वाज पैक्ड विद वर्शिपर्स, उस वक्त हमने ये धमाका किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मर सकें। तो अब आप खुद सोचें कि ये ISIL वाले जो हैं, इनकी ये अपने आप को मुसलमान कहने के लायक हैं कि नहीं है, खुद आप सोचें कि मुसलमानों से मस्जिद भरी हुई है और आप इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि और लोग आए और लोग आए, और फिर आप धमाका करें, तो आप नमाज पढ़ते हुए लोगों को मार रहे हैं, तो डू यू डिजर्व टू बी कॉल्ड अ मुस्लिम? बहरहाल आप ये खुद डिसाइड करें। तो ये हुआ। अच्छा जनाब, बोरिस जॉनसन साहब जो हैं इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, वो पहुंच गए हैं अब इंडिया 2 दिन के दौरे के ऊपर, और खूब घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, और बड़े उधर मजे कर रहे हैं, कभी उस पर रिक्शे पे चढ़ जाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। और इनकी जो है मोदी जी के साथ मुलाकातें हुई हैं, जिसमें कि इन्होंने डिस्कस किया है ट्रेड एंड सिक्योरिटी, और फिर ये गुजरात गए हुए थे जो कि इंडिया की 5th बिगेस्ट स्टेट है, और फिर ये महात्मा गांधी के जो मजार है, नहीं जो उनकी जो सेंटर ऑफ कैंपेन थी जहां पे इन्होंने की थी ब्रिटिश के अगेंस्ट कैंपेन की थी, साबरमती आश्रम वहां पे गए ये, और लेकिन ये सारा घूम फिर रहे हैं। लेकिन लोगों ने कहा जी, इनसे पूछा कि आप क्या खाना भी जो है वो वेजिटेरियन खाएंगे, तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं खाना मैं वेजिटेरियन नहीं खाऊंगा, मुझे लैम रोगन जोश जो है वो बड़ा पसंद है, तो मैं वो खाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा यहां पे इंडिया के दौरे पे अभी ये आज पहला ही दिन था, तो आज उन्होंने पहला ही दिन उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि मैंने बहुत सारे MOUs साइन किए हैं इंडियन कंपनियों के साथ और उनको इंग्लैंड में बुलाया है। सो दिस इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी £1 बिलियन की, और उसकी वजह से वो कहते हैं कि 11,000 जॉब्स जो हैं वो भी क्रिएट होंगी इंग्लैंड के अंदर। और उनका कहना है कि इसके अलावा हम जो हैं जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो बातचीत है वो भी हम करेंगे, और इन्होंने JCB का जो प्लांट है उसको भी इन्होंने आज जाके विजिट किया, और वहां पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसकी बड़ी तारीफ की। ये आपको पता ही है कि इंग्लैंड के जो टोरी लॉर्ड हैं बैम्फर्ड, वो इसको रन करते हैं, तो बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ये जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे डेवलप की जा रही है और ये हमारी दोस्ती जो है उसको और आगे बढ़ाएगी और हम इसके इंडिया के साथ मजबूत करेंगे रिश्ते। और इसके अलावा इनके बीच में बातचीत यूक्रेन पे भी हुई। तो बहुत ही आज इंटरेस्टिंग एक बयान आया है बोरिस जॉनसन साहब का, जिसमें कि वो कहते हैं जी कि मेरी बहुत डिटेल में इंडिया से बात हुई है और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज को कि इंडिया ने बड़ा कंडेम किया ये जो एट्रोसिटीज हो रही हैं यूक्रेन में। और उन्होंने ये भी कहा है जी कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें तुम्हारा कॉम्प्लेक्स किस्म का रिलेशनशिप रशिया से समझ नहीं आता, हम समझते हैं, हम लोग समझते हैं तुम्हारा रिलेशनशिप जो है। तो भरत तुमने बहुत अच्छा किया कि ये जो एट्रोसिटीज जो यूक्रेन में हो रही है तुमने उसको बड़ा कंडेम किया, तो हम समझते हैं ये सब चीजें, अच्छा किया आपने। इंडियन एक्सप्रेस की आज एक न्यूज है जी, और इंडियन एक्सप्रेस की इस न्यूज के मुताबिक जनाब नास्तिक के पुलिस कमिश्नर जो हैं दीपक पांडे, उनको आज जो ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर जो है तकरीबन 40 के करीब ट्रांसफर्स हुए हैं। अच्छा जी, इस दीपक पांडे साहब को क्यों किया गया है? दीपक पांडे साहब को इसलिए ट्रांसफर किया गया है क्योंकि इन्होंने एक डायरेक्टिव छापा था जब बहुत ज्यादा ये जो है यहां पे हंगामा और शोर मच गया था महाराष्ट्र के अंदर कि जहां जहां अजान होएगी वहां वहां हम भी जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो इन्होंने दीपक पांडे साहब ने एक बड़ा ही बोल्ड डिसीजन दिया था और पुलिस डायरेक्टिव के मुताबिक जो कि कमिश्नर दीपक पांडे ने दिया उसके मुताबिक कोई भी हनुमान चालीसवा 15 मिनट अजान से पहले और 15 मिनट अजान के बाद नहीं पढ़ेगा। तो ये बात फिर अथॉरिटीज को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा आपने मुसलमानों का साथ कैसे दिया है, तो इनको जनाब उठा के फेंक दिया गया है। और जैसे वो हमारी जबान में कहते हैं ना, इनको खुटे लाइन लगाया, तो इनको सही मानों में खुटे लाइन लगाया। इनको कहा जी तुम्हें बहुत बड़ी हम पोस्ट दे रहे हैं, तुम्हें आईजी पुलिस बना रहे हैं विमेन अफेयर्स का तो विमेन अफेयर्स की जो डिवीजन है या विंग है उसका तुमने ख्याल रखना है, तो औरतों के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं तुम उनको देखो। तो इनको जी वहां से हटा दिया गया, जिसके ऊपर जाहिर है कि सिविल सोसाइटी ने और जो एनजीओज हैं उन्होंने काफी शोर हंगामा मचाया कि भाई एक असूल के ऊपर उसने बात की थी तो उसको आपने, बहरहाल जी असूल दुनिया में कम चलते हैं। इंडिया टुडे की आज एक न्यूज है और इंडिया टुडे की इस न्यूज के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो लीडर हैं बृंदा कारत, वो उधर पहुंची हुई थी जो है ये जो जो कुछ हुआ है दिल्ली के जहांगीरपुरी के अंदर, और इन्होंने आज जो है सारी बात सामने लाई है। उन्होंने कहा जी कि ये जो मुसलमानों की 20 दुकानें और घर डिमोलिश किए गए हैं, यहां तक कि वो एक मस्जिद तक पहुंच गए थे जब लोग खड़े हो गए आगे, और उन्होंने कहा जी मस्जिद को हम आपको गिराने नहीं देंगे। तो वो कहती हैं जी कि मैं जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि डिमोलिशन को रोको तो मैं फौरन भागी वहां पे जहांगीरपुरी में 10:45 पे एग्जैक्टली मैं वहां पे पहुंच गई, और वो जो एमसीडी के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग थे रन बाय बीजेपी गवर्नमेंट उनको मैंने उसी वक्त कह दिया कि इमीडिएटली स्टॉप करो, लेकिन एग्जैक्टली 12:45 तक वो डिमोलिशन करते रहे और उन्होंने इवन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना। तो उन्होंने आज कोर्ट को कहा है इन्होंने बिंद्रा कैरत ने कि जिस वक्त आप ये बात करेंगे कि ये अब डिमोलिश और मुसलमानों की दुकानें और घर नहीं हो सकते, तो गवर्नमेंट को ये भी आप कहें कि उन गरीब लोगों को जो है वो कॉम्पेंसेशन दे, क्योंकि ये बहुत गरीब लोग हैं, ये खुद जो है अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे अथॉरिटीज के सामने अगर इनको मारा पीटा गया या डराया धमकाया गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज है जी, और इसमें जो कांग्रेस लीडर हैं हमारे नवजोत सिंह सिद्धू साहब, उन्होंने पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, जो इंडियन पंजाब है उसके चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को जो है वो रबड़ की गुड़िया कहा है। उन्होंने कहा इसको जिस तरफ आप मोड़ देते हैं उस तरफ मुड़ जाती है, इसका अपना कुछ लेना देना नहीं है, ये जो सियासत पंजाब में चला रहा है इसको चलाने वाला कहीं और ही बैठा है, दिल्ली में बैठा है। यानी कि इन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर हैं बल्कि आम आदमी पार्टी के हेड भी हैं, तो उनके बारे में कहा। तो इन्होंने ये बातें उस वक्त कही जिस वक्त ये एक्स आप जो लीडर्स हैं कुमार विश्वास और कांग्रेस की अलका लांबा जो हैं उनके घरों के ऊपर जो हैं पुलिस की रेड्स हुई। तो इन्होंने कहा जी कि ये सारे ऑर्डर्स दिल्ली से आते हैं, इसमें भगवंत मान का कुछ लेना देना नहीं है। तो आज फिर जनता इन पे भड़क गई कि ये कैसे बयान देते हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब। अच्छा जी, इमरान खान साहब का आपको शायद पता होगा कि कल ये ट्विटर स्पेसेस में थे। आपको पता ही है कि ट्विटर स्पेस क्या जगह है जहां पे आप हर तरह की डिस्कशन कर सकते हैं और आपको उसमें रोका नहीं जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्विटर स्पेस। ट्विटर स्पेस में कल इमरान खान साहब जो थे लोगों के साथ जुड़े हुए थे, एंड अकॉर्डिंग टू ये जो सारी डिटेल्स आई हैं तकरीबन 446,000 पीपल जो हैं इनको दुनिया से इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे. एट वन गिवन टाइम ओवर 165,000 पीपल ऑन एवरेज वर लिसनिंग टू इमरान खान. तो वो कहते हैं जी कि ट्विटर स्पेस का इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जो कि पहले के पॉप के पास था, जो कि वो यूज किया था उन्होंने अपनी लिरिकल स्पेस के लिए, और उसके अंदर 44,000 जो थे इनके साथ लोग जुड़े थे. और इसके अलावा जो सेल्वाडोर बिल एनालिसिस है उसमें जो थे तकरीबन 27,000 लोग जो है वो जुड़े थे. तो मतलब ये इमरान खान साहब ने जो है ये किया. अच्छा, अब जब ये स्पेस चल रही थी, ट्विटर स्पेस चल रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने एक स्क्रीन ग्रैब किया है. उस स्क्रीन ग्रैब के अंदर नजर आ रहा है कि मरियम नवाज भी वो सुन रही हैं इमरान खान का ट्विटर स्पेस. तो अब इस चीज पे दुनिया बड़ी भड़क गई. और एक्स डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो कासिम खान सूरी साहब, उन्होंने वो सर्कल करके अपने ट्विटर पेज पे डाला और उन्होंने कहा छुप छुप बैठे हो, जरूर कोई बात है. बहरहाल जी, इनको बड़ा खराब लगा पीएमएलएन को. उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमारी वाइस प्रेसिडेंट नहीं सुन रही थी. और जो इनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं जीशान मलिक, उन्होंने कहा ये बिल्कुल फेक है और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है. अब सच्चाई क्या है आप खुद फाइंड आउट कर लें, वहां पे देख लें. अच्छा जी, डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे नए गवर्नमेंट के नए डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, वो बैठे हुए थे जनाब कल कैपिटल टॉक के ऊपर हामिद मीर साहब के पास. और उसमें इन्होंने कहा जी कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बेच दिया है, क्योंकि इनको आईएमएफ से जो है 6 बिलियन का लोन चाहिए था. तो इन्होंने एसबीपी का जो एक्ट 1956 है उसको अमेंड किया. अच्छा जी, अब इसके अंदर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये, और वो कहते हैं जी कि हम आने वाले दिनों में, मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि इसको आप रिवर्स करें. अच्छा जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को क्यों किया गया था, आजाद किया गया था, कि वो अपनी आजादाना मॉनिटरी पॉलिसीज बनाए, जो डिफॉल्टर्स हैं उनसे पैसे ले, और जिससे जो उनसे जो है अगर कर्जे के लिए कोई उनको अप्लाई करता है और उनको लगता है कि इस आदमी को हमको कर्जा नहीं देना चाहिए तो उसको रिजेक्ट कर दे. तो ये जी, तो उसके ऊपर अब इनको एतराज है कि ये आपने क्यों ऐसी पॉलिसी बनाई है, तो अब हम इसको रिवर्स करेंगे. यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फिर से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर होएगा और जो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर उसको बोलेगी वो करेंगे. ठीक है जी,
ठीक हो गया.
हाँ जी, ठीक है, खुश हो गए आप. अच्छा, वैसे बाय द वे आपके लिए एक और भी खुशखबरी है. आज शहबाज शरीफ साहब, अभी मेरे ख्याल में वो बयान भी आ जाएगा, ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो हक दिया गया था ना वोट का, वो खत्म कर दिया उन्होंने. हाँ, ना खत्म कर दिया. तो आप, मुबारक हो आपको, अब आप वोट नहीं कर सकते. ठीक है, अच्छा, ओके जनाब. आपको हमने कल बताया था कि हमारे बीबी जरदारी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के पास लंदन पहुंचे हुए हैं. तो आज उनकी मुलाकातें हुई हैं जनाब, यहां पे जो नवाज शरीफ साहब के जो बेटे का ऑफिस है स्टैन होप हाउस में, वहां पे इनकी मुलाकातें थी. और वहां पे शेरी रहमान, नवीद कमर, कमर जमान कायरा, हसन एंड हुसैन नवाज, इसाक डार, आबिद शेर अली, और ये सब लोग वहां पे मौजूद थे. अच्छा, पहला तो क्वेश्चन लोगों ने ये पूछा कि जो इतना बड़ा डेलीगेशन बिलावल साहब के साथ उधर गया है, वो टैक्स पेयर के पैसे पे गया है कि अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं? तो बहरहाल इसका जवाब मैं आपको दे देती हूं कि नहीं, टैक्स पेयर के पैसे पे वो गए हैं, जाहिर है डेफिनेटली अपनी जेब से. जी कौन पागल है अपनी जेब से पैसे खर्च करके लंदन जाए? इतना एक्सपेंसिव किराया है मजद भाई, फिर रहना, खाना पीना, शॉपिंग है जी, क्या बात कर रहे हैं. हाँ जी, तो ये वहां पे गए हैं जी. तो इन्होंने, बीबी जरदारी साहब ने बड़ी मुबारकबाद दी है नवाज शरीफ साहब को. उन्होंने कहा थोड़ी सेहत भी ठीक है. बहरहाल जी, आपका जो वो भाई का बेटा भांजा होता है, भांजा जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन गया है और अब आपके ऊपर से काले बादल हट गए हैं. लेकिन मैं आपसे इसलिए मिलने के लिए आया हूं क्योंकि हमने डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है पाकिस्तान में.
ओके,
आज तक डेमोक्रेसी नहीं थी पाकिस्तान में, ये पहली दफा होने जा रहा है 75 ईयर्स में. ठीक है जी, डेमोक्रेसी को हम रिस्टोर करेंगे और हम दोनों मिलके काम करेंगे. और ये जो अभी मैं बयान दूंगी ना बीबी जरदारी साहब का, मज भाई आप बिल्कुल गच खा के गिर जाएंगे. उन्होंने कहा मैं मानता हूं नवाज शरीफ साहब डेमोक्रेसी के लिए आपकी बहुत सारी सेक्रीफाइसेज हैं. गश खाई आपने, गशा गया आपको, देखा ये बयान था आज बीबी जरदारी. उन्होंने कहा हम मानते हैं आपकी बड़ी वो है, तो अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे, हमारे बीच में कोई डिफरेंसेज नहीं होने चाहिए. हैं जी, तो इसके ऊपर जो है वो बड़े खुश हो गए. उन्होंने कहा जी हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर काम करेंगे और हमने कोई गहराई नहीं काम नहीं करना. अच्छा, वेरी गुड. अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, इमरान खान साहब ने बड़े गलत काम किए. ये कह रहा है तो मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, इस जैसे आदमी के खिलाफ किसने कॉन्स्पिरेसी करनी है, ये घर में बैठ के स्टोरियां बनाता रहता है. तो ये सब है, ठीक है, अब हम मिलकर काम करेंगे. ठीक है भाई, खुश हैं आप?
ठीक हो गया.
अच्छा जी, ठीक है. दो आज अब मैंने आपको खुशखबरियां सुनाई हैं. ठीक है, ओके. एक आपसे वोट का हक ले लिया है, दूसरा डेमोक्रेसी रिस्टोर होने लगी है,
और बात ये
ठीक है ओके। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पीएमएलएन की मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने कहा है जी कि आपको शायद पता नहीं है पाकिस्तान के लोगों को, जिस दिन से इमरान खान साहब जो हैं वो यहां पे जो है हुकूमत में आए थे, इनकी इनकम डबल हो गई है।
अच्छा,
हाँ, इमरान खान साहब की इनकम डबल हो गई है क्योंकि वो तोशा खाना की चीजें बेच बेच के अपनी जेब में पैसे डाल रहे थे, है जी। तो उन्होंने कहा जी कि ये वैसे तो कहते हैं कि ये सिर्फ 20% के ऊपर था, ये गिफ्ट्स के ऊपर मैंने 50% उसको बढ़ा दिया, तो वो सारे पैसे कहां गए, तो इनके ऊपर जो है अब हम रेफरेंस लाएंगे और ये जो कैंपेन चला रहे हैं स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इन सब कैंपेन्स का जो है हम वो लेंगे, और ये जो पीछे इनकी रोबोटिक टीम बैठी है, कोई बंदे नहीं बैठे हुए, सिर्फ रोबोट्स इन्होंने बिठाए हुए हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे, जो कि झूठी खबरें जो ऐसे छापते रहते हैं, तो हमने कह दिया बड़ा सख्त किस्म का वो जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस ऑफिस है उसको कि भाई तुमने सारा ये मॉनिटर करना, ये कौन रोबोट्स बैठे हुए हैं पीछे, ये क्या काम कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर इमरान खान साहब का, ये बात है ठीक है जी। एंड जनाब, ये वैसे तो तीन चार और भी यू टर्न्स आए हैं अभी तक शहबाज शरीफ के पांच दिनों में, लेकिन ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है जो हम आपको बता देते हैं। आपको पता ही है कि जैसे पहले दिन उन्होंने आके कहा था कि हम तनख्वाहें बढ़ा देंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं बजट आएगा फिर हम बढ़ाएंगे, वो एक बड़ा था। दूसरा बड़ा ये है तारिक फतमी साहब, अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तारिक फतमी साहब कौन है, बहरहाल जी इनके बारे में कहा गया था कि इनको स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फॉरन अफेयर्स बनाया जाएगा। अच्छा, तारिक फतमी साहब वैसे तो बड़े डाई हार्ट पीएमएलएन के वो हैं फॉरेन ऑफिस के अंदर डिप्लोमेट, लेकिन अगर आपको याद हो कि एक स्टोरी आई थी सिरिल अल्मेडा की डॉन ली में, जिसमें कि उसने कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने मिलिट्री को बड़ी झाड़ पिलाई है, और उसने कहा था इशारों में, उन्होंने कहा था, डॉन न्यूज़पेपर ने फिर कहा था जब उनसे पूछा गया कि ये स्टोरी आपको कहां से मिली है, तो इशारों कनायों में कहा गया कि ये सारी की सारी स्टोरी लीक की है तारिक फतमी साहब ने। अच्छा जी, तो ये है बैकग्राउंड, ठीक है। अच्छा, अब जब इनको अनाउंस किया तो पीपीपी नाराज हो गई। पीपीपी ने कहा जी कि आपने इस आदमी को कैसे किया है, एक तो ये डॉन लीक्स का जिम्मेदार है नंबर वन, जिसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट भी गई, नंबर टू ये है कि फॉरन ऑफिस तो आपने हमको दिया है, तो इसके अंदर तो बंदे हमने लगाने हैं, तो आपने तारिक फतमी साहब को कैसे लगाया, लिहाजा जी इनको कहा गया पायान थैंक यू, थैंक्स बट नो थैंक्स, है जी, तुहानू कोई ऐसी पोस्ट नहीं दे रहे पायान, बहुत सॉरी। अब देखें आप एक सीजन जर्नलिस्ट की वो उसकी डिप्लोमेट की कितनी इन्होंने बेइज्जती की। बहरहाल एनीवे, छोटे बड़े बड़े मुल्कों में फिर ये छोटे मोटे काम करते रहते हैं ना। अच्छा जी, अच्छा जी, हमने आपको कल बताया था कि यूएस की कांग्रेस वुमन इलाम उमर साहिबा जो है वो पाकिस्तान आई हुई है, और वो उन्होंने मुलाकातें पहले की इमरान खान साहब से, फिर उन्होंने शहबाज शरीफ, आज वो पहुंची हुई थी आजाद जम्मू और कश्मीर, वहां पर जब ये गई हैं तो वहां पर इंडिया बड़ा भड़क गया है। इंडिया ने किया कि ये यूएस कांग्रेस वुमन क्यों वहां पे है। अब अगर इल्हाम उमर का आपको बैकग्राउंड पता होए, शी इज अ सोमाली बाय ओरिजिन, तो सोमाली अमेरिकन है, और ये जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का वैसे तो हिस्सा है, लेकिन ये वो खातून है जो कि इंडिया के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और मोदी जी की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती है। तो अब जाहिर है ऐसी लेडी अगर जाएगी आजाद जम्मू और कश्मीर तो इंडिया को अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने बड़े एतराज किए, उन्होंने कहा ये क्यों गई है, बहरहाल जी उसकी मर्जी है, अमेरिकन है, आजाद कौम की आजाद बचिंदी है, जिधर जाए है जी, जैसे शेर जंगल का बादशाह है, बच्चा दे अंडा दे, हम कोई पूछ सकते हैं उसको, व्हाट इज दिस, है जी। अच्छा जनाब, और जनाब कुछ चेंजेस आ गई हैं, एक तो हमारे से वोट राइट टू वोट ले लिया है, अच्छा दूसरी बहुत बड़ी खबर आज की, सिंध गवर्नमेंट ने जनाब शर्जील मेमन को अपनी कैबिनेट में इंडक्ट करने का फैसला बनाया, और शर्जील मेमन साहब के भी अगर आपको बैकग्राउंड पता हुए कि इनको पीपीपी की अपनी ही गवर्नमेंट के अंदर अरेस्ट किया गया था मनी के करप्शन मर्डर्स अलेजली, वो मिले थे अलेजली मर्डर्स अलेजली, और बहुत सारी चीजों के अंदर ये शामिल हैं, तो जनाब वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो जनाब इनको आज किया गया है, और भी ऐसे बहुत सारे शहजादे आएंगे अभी आने वाले थे, तो अभी इतने सारे मिनिस्टरों को लेने के बाद अब सिंध गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स की तादाद है जी 51 हो गए हैं, ठीक है जी। अजय काटे जी और कुछ आएंगे ठीक है। अच्छा जनाब, रणवीर सिंह साहब ने आज एक बड़ा दुख देने वाला इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जी जब मैं नया नया फिल्म इंडस्ट्री में आया, चूंकि मैं फिल्म बैकग्राउंड से नहीं था तो हर कोई जो है मुझे बड़ा क्रिटिसाइज करता था और सब लोग कहते थे तू कौन सा कोई ऋतिक रोशन की तरह का बड़ा हैंडसम है, तू कौन सा, तू हीरो मटीरियल नहीं है, तू कभी हीरो नहीं बन सकेगा इस इंडस्ट्री के अंदर। और जो है वो कहते हैं जी कि इस तरह की बात जो है जो मेरी पहली फिल्म के प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा साहब, उन्होंने भी कही कि तू चूंकि ऋतिक रोशन नहीं है इसलिए तू अपनी एक्टिंग के ऊपर जो है वो कर कॉन्सेंट्रेट। तो कहता है फिर मैंने जी उनको कहा जी ठीक है सर मैं ऐसे ही करूंगा, जाहिर है इसको पहली फिल्म चाहिए थी। और वो कहता है जब मैं थिएटर में गया कोई और मूवी देखने तो मेरा पोस्टर लगा हुआ था वो बैंड बाजा बारात का, तो उसको कुछ लड़के वहां पे खड़े होकर कह रहे थे कि इसको साले को किसने हीरो बनाया है भाई उनकी अपनी लैंग्वेज है हम नहीं बोल रहे ये वो बोल रहे हैं। तो ठीक है वो कहते हैं इसको किसने, ये तो हीरो मटेरियल ही नहीं है, तो शक्ल ही नहीं है हीरोज वाली, तो ये कैसे है ठीक है जनाब। तो ऐसे अच्छा जी अक्षय कुमार साहब से लोग बड़े नाराज हो गए हैं, कुछ लोगों ने कुछ और बातें की, कुछ नाराज हो गए। अच्छा जी हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक टोबैको ब्रांड है विमल, उसके अंदर जनाब ये नजर आए हैं विमल के अंदर। अच्छा वो लोग जो हैं वो सारी जनता भड़क गई, वो कहते हैं जी कि हम तो तुम्हें अपना आइडियल समझते हैं तो तुम इस टोबैको के ब्रांड के अंदर कैसे आए हो। बहरहाल जी फिर इन्होंने कोई रात के 1 बजे अपने फैन से जो है वो माफी शाफी मांगी। अक्षय कुमार साहब का कहना है कि मैं जो है जल्दी सो जाता हूं, 9 बजे सो जाता हूं क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। तो बहुत सारे लोगों ने, एक तो उन्होंने कहा वेरी गुड थैंक यू आपने अपोलोजाइज कर लिया, आप जैसे एक्टर को ये टोबैको शोबैको से पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद इन्होंने कहा हां जी मैं इस एड के सारे पैसे किसी अच्छे कॉज में लगा दूंगा। कुछ लोगों ने बड़ी हैरत का इजहार किया, उन्होंने कहा आप तो 9 बजे सो जाते हैं तो आप अभी तक कैसे जाग रहे हैं मतलब लोगों ने भी चैन नहीं है जी पहले जी सारी क्यों नहीं कर रहे हो, आप सारी कर रही आप जाग क्यों रहे हो अच्छा जी ये है जी हुआ। एंड जनाब हमारे जो जोकोविच साहब है, नोवाक जोकोविच, नोवाक उन्होंने वैक्सीन नहीं कराई अभी तक वैसे हैं जी, तो सही नाम है नोवाक। अच्छा जी नोवाक जोकोविच साहब जो है आज बड़े भैड़के हुए नजर आए क्योंकि विमिल्डन ने रशियन और बेलारूस के जो प्लेयर्स हैं उनको विमिल्डन से बैन कर दिया है, उनको कहा है कि वो विमिल्डन नहीं खेलेंगे। तो इन्होंने कहा है जी कि ये आज बात कर रहे थे सर्बिया ओपन में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहां पर रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मैं तो खुद एक सर्ब हूं और सर्बिया के अंदर जब वॉर हुई थी तो हमने तो खुद सफर किया था, तो हम वी हेट वॉर वी अंडरस्टैंड दिस, लेकिन उसके लिए आपको एथलीट्स और प्लेयर्स और स्पोर्ट्समैन को जो है नहीं करना चाहिए जो कुछ रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, उनको नहीं सफर करना चाहिए। और वो कहते हैं कि इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी जिस वक्त आप स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को इंटरफेयर करने देते हैं, तो ये जो काम विमिल्डन ने किया है ये गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए था। एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज अबाउट फॉर्मर इंग्लैंड बैटर रॉब के, 42 ईयर्स इनकी एज है और अभी जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज चल रही थी उसके अंदर ये आए हुए थे और इन्होंने पाकिस्तान की जम के तारीफ की है। उन्होंने कहा दुनिया के जितने भी हिस्सों में मैं कभी गया हूं पाकिस्तान उनमें से बेस्ट कंट्री है, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और हॉस्पिटैलिटी तो जो पाकिस्तानियों की है वो अनमैच्ड है। और हम जब इंग्लैंड में होते हैं तो हमें कुछ आइडिया नहीं था इस कंट्री के बारे में, जब उन्होंने मुझे कहा कि तुमको कंट्री करने पाकिस्तान जाना है तो आई वॉजन श्योर, मुझे पता नहीं था कि मैं जाऊं ना जाऊं क्योंकि किस तरह का कंट्री है, कोई अजीब परसेप्शन है इंग्लैंड में पाकिस्तान के बारे। लेकिन वो कहते हैं जी जब मैं आए तो मैं इतना खुश हूं फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम सो प्रिविलेज, आई फील सो प्रिविलेज कि मैं इधर आया हूं और मैं इट वॉज फैंटेस्टिक कि मैं इधर आया और जो है मैं बहुत खुश हूं और बड़ा जबरदस्त कंट्री और गलत परसेप्शन है इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि आपके जो फेवरेट मोमेंट्स थे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच के बीच में वो कहते हैं वो कौन से थे, वो कहते थे कैप्टन टू कैप्टन। उन्होंने कहा क्या मतलब कैप्टन टू कैप्टन, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो है पैट कमिंग्स जो है जब वो बॉलिंग कराता था पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम को तो वो मेरे फेवरेट मोमेंट्स होते थे। तो बड़ी उन्होंने पाकिस्तान की और पाकिस्तान क्रिकेट की आज बहुत तारीफ की है हमारे।
ठीक हो गया जी, ये थी आज की न्यूज एंड बाकी की न्यूज इंशाल्लाह ताला कल फिर आएंगे हम, कल इसी टाइम पे नहीं कल इससे पहले आएंगे क्योंकि 5:30 बजे तो इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो का फंड रेजिंग शुरू होने वाला है, तो कल 5:30 बजे से हम उनके साथ होंगे इसी स्टूडियो में, मगर खबरें मेरे ख्याल हम उससे पहले कर लेंगे।
yes.
कितने बजे करेंगे आप देखते रहिए आप
ये एक राज है
ये एक राज है ये राज है, इसके राज को फाश नहीं कर सकते हम।
ओके भाई आई विल सी यू टुमारो,
थैंक यू सो मच शरद जी। एंड कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
विलेज टेस्ट जीटीए में सबसे बड़ा पाकिस्तानी हलाल बुफे। एंजॉय करें हमारे डिलीशियस मेन्यू को रमजान बुफे के साथ। मंडे टू थर्सडे 2349, बच्चों के लिए 1199 4 टू 11 इयर्स। फ्राइडे टू संडे 2849, बच्चों के लिए 1399 4 टू 11 इयर्स। इफ्तार पैकेज, कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 6477744888 6477744888।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
तुम घर क्यों नहीं खरीदते?
मेरे लिए आज की मार्केट में घर खरीदना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।
मैं भी ऐसे ही सोचता था, मगर रॉयल कैनेडियन रियल्टी के जस्टिन जेम्स ने सब कुछ आसान और मुमकिन बना दिया और देखो आज मेरा घर है।
जस्टिन जेम्स को कैसे कॉन्टेक्ट करूँ?
रॉयल कैनेडियन रियल्टी के जस्टिन जेम्स 6476886931 6476886931।
Spirit Mickey Menswear. Three elements that represent the brand, fit, quality and value. Only South Asian owned men's custom sweating and shirting company in Canada. Fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compared to Harry Rosen, Burberry and Hugo Boss. 100% Italian wool suit starting from $2.99. 100% Egyptian cotton shirt starting from $29.99. Chinos, Mariano, wool sweaters, denim jeans, corduroy shirts, trousers and more. Visit today, 1535 Merseyside Drive, Unit 19. 20 Mississauga. Call 905-670-3388.
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 905-455-1666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
जी साहब, इसके साथ ही बस अब वक्त आया आपसे इजाजत चाहने का, मतलब मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ। 770 इधर ही है और आप सुनते रहें इसको, 24 आवर्स हमारे साथ रहते हैं आप। मगर अभी 6:30 बजे हमारा स्पेशल सेगमेंट होगा और स्पेशल सेगमेंट ऑफ इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो की जानिब से, और 5:30 से 6 बजे तक, 6:30 से 7 बजे तक, 6:30 से 7 बजे तक, और 7 बजे डॉक्टर फरहत हाशमी हमारे साथ होंगी और इसी को प्रोग्राम को लिए चलेंगे हम अफ्तारी तक। चलते चलते गुजारिश करते चलते हमेशा करता रहूँगा कि अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखा करें। हम आपके लिए दुआगो होंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खास तौर से हमारे दोस्त, हमारे भाई मुजफ्फर अली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, उनके साथ वो तमाम लोग जो अपना सफ़र मुकम्मल करके इस दुनिया से रुख्सत हो चुके हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला उनके गुनाहों को बख्श दें, उनके दराजात को बुलंद करें, उन्हें जल्द फ़िरदौस में अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह तआला कल फिर आपसे मुलाकात, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू प्रोग्राम इन प्रोग्रेस। जीशान पेश करते हैं, समा फरमाइए।
पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे मेरा, गफलत में डूबा दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे,
دل مغموم کو مسرور کر دے, دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میں وحدت پلا مخمور کر دے, میں وحدت پلا مخمور کر دے, محبت کے نشے میں چور کر دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.
آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ریڈیو ساز آواز 770 AM پر. ہمارے لائیو 24 گھنٹے کی نشریات کو دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com. ڈاؤن لوڈ کیجیے ہماری فری ای آواز آفیشیل ایپ اینڈرائڈ اور ایپل پر. ہماری نشریات کو اپنے لوکل فون پر سننے کے لیے ڈائل کیجیے 6478724900. آئیے اب سنتے ہیں رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام. اس کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے اسلامک فاؤنڈیشن آف ٹورنٹو نے. اس پروگرام کو آپ ریڈیو کے علاوہ ہمارے چینل ای آواز ٹی وی اور فیس بک ای آواز پر لائیو دیکھ سکتے ہیں.
My name is Asia Khan. Ramadan Kareem to everyone. I wanted to first start by thanking the Islamic Foundation of Toronto for inviting me and also creating a platform to engage in these conversations during this blessed month of Ramadan. I wanted to share my appreciation for IFT and its management for its religious community and outreach services. I acknowledge President Brother Akbar Warsi and Brother Javed Ali Khan and the board of directors for doing amazing work as volunteers to serve the community through IFT. I know there are numbers on the screen, so please do note these numbers or donate online to ensure that this pillar of our community continues to thrive and to flourish. Many of us, as we recognize the pandemic continues, this Ramadan, of course, feels different, but for many of us in conversation have shared that they're so, so excited that their masjids are open, that they can go for Taraweeh, and there's that sense of normalcy coming back. And as we think about kind of how blessed we feel this Ramadan, and also how incredibly reflective we are thinking about, you know, how different these last few years have been because of the pandemic, I think many of us have grown to have an increased appreciation for our mosques, recognizing that not only are they a place for worship, but they're also a very important place for community building, for relationships, for elders, for our youth. And so as we think about the blessing of this month, I also want us to be mindful of how blessed we are to be able to have a deeper connection with our mosques this month, as many of them are open for Taraweeh. And I also want us to kind of keep that in mind as we think about donations and how we can continue to sustain these very important parts of our community. Many of us, as we were looking forward to Ramadan, we recognized how important Ramadan was and how much we needed it. I've had many conversations with people sharing, you know, I'm really looking forward to it this year. You know, these past few months have been really difficult. And for many of us who have lost loved ones during the last few years, many folks have shared that Ramadan is a time when they make increased dua for their loved ones who they've lost, or they engage in increased worship as a way to kind of reflect and to also think about the future, right? And some of the goals they have and some of their priorities. There's a very important dua that many of us share before Ramadan starts and we think about this and reflect on it, it's, oh Allah, grant us blessings during Rajab and Shaban and allow us to reach Ramadan. And so now that we've reached it, what is Ramadan really about? You know, and I get a lot of people asking, you know, Muslims and non-Muslims who often, you know, wonder what Ramadan is about and, you know, what is it beyond fasting, right? Many of us, the first thing that comes to mind is fasting, right? No food, no drink. But what is it beyond that? And when we think deeply about it, for many of us, it becomes an opportunity, a month for reflection, a month for transformation, and also a month for revival. We pray that our deeds are accepted, but we also think about how we can allow the blessings of this month to transcend these, you know, these few weeks, this month that we have, and allow us to engage in worship, in acts that take us through to our final days, right? How do we propel and ensure that we cultivate enough blessings, enough stamina in this month to, you know, move forward in a way that's beneficial to us and in a way that pleases Allah subhanahu wa ta'ala. And so as we reflect on the last few years, as we reflect on even just being in this month, I wanted to talk specifically about how we can engage young people, how we can engage youth in conversations about Ramadan during this month and even beyond this month. You know, many of us are very well aware that these last few years, there's been increasing amounts of, you know, mental health challenges, given, you know, restrictions and people feeling increasingly lonely, you know, young people, but also adults and especially our elders. And so thinking about, you know, pieces around mental health is important. It's also important to note that during the pandemic, folks who have already, who already were in positions where they felt vulnerable or were going through difficulty, oftentimes the pandemic exacerbated these difficulties, right? And so it's important to keep that in mind as well. And so when we're thinking about these feelings of perhaps loneliness, even anxiety, even depression, you know, a recent study from CAMH noted that Canadians experienced some of the highest levels of loneliness. And this is especially amongst women and frontline workers, you know, over the last few years. And what's really important to think about is, how can we take our faith as a source of empowerment during these times that do feel very lonely and isolating? Studies have also showed that faith can be a protective factor against loneliness. And by that, I mean, faith can be something that we use, that we take from, that we find meaning in to provide us solace, to provide us meaning during times that are difficult, right? And so faith becomes a protection. It becomes a protective factor against loneliness. And so how can faith be a protective factor against loneliness? And there are many, many ways. And, you know, when we think about faith, we think about, you know, the Muslim ummah as an entire community, even the word ummah, right? When we think about what it means. Islam and, you know, when we're thinking about how do we live out Islam, our faith reminds us of the importance of community and being connected. And so when we're thinking about loneliness, right, our faith has built within itself a way for us to engage in communal prayer, for example, right? We have a Jummah prayer. We get increased rewards for engaging in communal prayer. We have Taraweeh prayer. And so there's this beautiful aspect, this communal aspect to our faith, right? And so when we're thinking about, you know, engaging with our faith, and we're thinking about youth, particularly during this time, I encourage young people to think about how do we meaningfully engage, right, with our communities. You know, many of us recognize that sometimes, you know, given the current landscape, we do recognize an increased intolerance for different faiths, specifically when we're looking at the rise in Islamophobia. How do we engage and how do we process this? And so for young people, thinking about being rooted in faith and being rooted in community is sometimes a very powerful way to begin to process, you know, some of the intolerance out there. But it also becomes a powerful way to for them to affirm parts of their identity. Being in a space that celebrates Muslim identity can be very empowering for young people. Right. So thinking about how do we connect people to important community spaces? It could be a mosque. It could be a sports team. Right. That maybe is that has, you know, young Muslims on it. It could be community service. Right. Thinking about how do we connect young people to spaces that affirm who they are is an important aspect, an important way to challenge some of the loneliness and the disconnectedness that many of us are feeling. So being involved in our communities is important. And when we're thinking even just, you know, on a very kind of micro level, when we're even thinking about just our worship is a way for us to engage meaningfully with our Creator. When we're thinking about even Surah Fatiha, if we, you know, take time to learn the meaning, you know, if many of us, you know, aren't necessarily, if we don't know the meaning in Arabic, taking time to learn the meaning of Surah Fatiha and recognize that it's actually a conversation with Allah subhanahu wa ta'ala, right? And what that means. You know, many of us have our agendas, we have calendars, we have meetings set up with a ton of people throughout the day. But when we're thinking about this particular meeting, right? When, as we're reciting Surah Fatiha, we are having a conversation with the Creator of the universe. And so what does that mean, right? And how do we engage meaningfully in that part of our worship? And so, you know, it's very easy for us to kind of, our minds to drift off during prayer. It's very easy for us to be thinking about, oh, what do we have next? You know, what's next in my school day? I have this assignment due, or I have this meeting at work. It's very easy for us to lose track. And so Surah Fatiha is a way to anchor us back, to remind us of what's important, to remind us of our priorities, and to think about truly what it means. And so I encourage us to even think about how do we meaningfully engage in our prayers, right? I know we talked about community, but what does it mean to engage in our prayer? So perhaps starting with Surah Fatiha. And Surah Fatiha really translates as the opening. Right. And it's such a beautiful translation. And we're thinking about the opening and what that means for us. Perhaps this is our opening to come closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Perhaps this is our opening to chart a new path, a path that's mindful. Right. And I also encourage folks to think about dua. Right. Our prayers. Ramadan is, you know, is a time known to engage in dua. Right. Some people write down their du'as. Some people have du'a journals. Some people, you know, are very, very serious about their du'as. And for some of us, you know, it's more spontaneous. We tend to make du'a when something's not going so well in our lives or we're going through something difficult. Whatever the case may be, I encourage you to turn to du'a during this month and beyond. Right. And you'll find that the du'as you made in Ramadan, you'll see the ways in which they come to life during the rest of the year, right? We often, you know, think about, you know, New Year's resolutions as a time to reflect, right? But really, Ramadan is our time to reflect, to think about what are our spiritual goals, right? What are our spiritual resolutions? How do we reorient our lives in a way that is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala? And dua is an important aspect of that reorientation. So again, in terms of meaningful engagement as a way to, you know, combat loneliness is to be involved in community, right? In all of the different aspects of whatever that means, right? For each of you, it might mean different things, right? And so how can you be involved in your own community in your own capacity? And it also involves being, you know, mindful in worship, right? So we can start with something as simple as Surah Fatiha, right? A surah that we recite regularly. How do we become mindful in that? How do we be mindful of the conversation we're having with Allah subhanahu wa ta'ala in that moment? And then, of course, you know, another way to obviously be engaged is through dua, right? That conversation. Because we know that Allah is all hearing, the all seeing. And so we're never truly alone. And so that could provide a lot of comfort for individuals who are going through difficulty. And so thinking about how we can kind of fight loneliness through the beauty of our faith is something that I encourage folks to reflect on. And the final thing that I think is important to think about is action, right? We talked a lot about being mindful, engaging, right? Being mindful of our actions and our words. But also, thinking about action is really important. As Muslims, we are oriented towards justice. Our faith asks us to be justice oriented, right? And so I know many of us are seeing, there's a lot, in recent times around being justice oriented, right? And Islam has taught that. Within Islam, we have a justice oriented pedagogy already embedded, right? And so we are asked to turn towards justice, even if it's against our own selves, right? Which is a really beautiful part of our faith. And so as part of that justice-oriented, direction that our faith takes, action, it also becomes a very important part, right? We are asked to act in a way that's just. And many of you, I'm sure, know, right? The Prophet ﷺ said, even if the day of judgment arrives and you're holding a sapling in your hand, right? So even if the day of judgment arrives and you're holding a sapling in your hand, plant it, right? So we are asked to act, right? To engage in actions that are just. And so when we're thinking about that, it's important for us to think about what that means for us, right? Everyone, depending on who we are, some of the access we have to resources, perhaps the connections we have in our community, for us, being able to act might look different. And that's fine, but we all do have the capacity to act towards justice, be it in our homes, be it towards ourselves, right? Because there are times when we oppress ourselves, right? So it could be even something so micro as even just being internal, or it could be even outward, right? When we're thinking about neighbors, when we're thinking about community, when we're thinking about even the institutions we're a part of, be it our workplaces, be it our schools, there are many opportunities for us to engage in ways that are just and to live in a way that is just, right? And that can mean a number of different things. And I think the best way for us to embody that is to look at the life of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, right? And what that means. And so when we're thinking about, things that are happening around the world, when we're thinking about globalized forms of Islamophobia, many of us have family, have friends in other parts of the world. Many of us worry about them and kind of the increased intolerance around the world. I want to again remind folks of the importance of dua, right? And the importance of the supplication of the oppressed. As we know, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, reported that the Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, said, "Beware of the supplication of the oppressed, even if he is an unbeliever, for there is no barrier between it and Allah." Right? And so as we reflect on the past few years, as we reflect on what seems like an increase in intolerance sometimes in our own communities, as we see the rise in Islamophobia, and we also see the rise in globalized Islamophobia in different parts of the world, it's important again to look to our faith, to look at the examples of those who came before us, to look at the Prophet and the way he dealt with forms of oppression, the way he dealt with intolerance, and to also seek comfort in knowing that there is no barrier between the prayer of the oppressed and Allah subhanahu wa ta'ala. And so as we think through the rest of this month, I encourage you to think about, how do we engage in actions that are meaningful, that are mindful, And how do we continue to live out a life that is oriented towards justice in a way that our Prophet had advised us to? You know, many of us I hear sometimes people share and young people share, you know, I don't know what I'm meant to do, or I don't really have much talents in, you know, social justice issues. So I don't really know how I'm going to be a part of action that is justice oriented. What I encourage young people and what I encourage families and parents to foster and to encourage is to encourage people to tap into their interests, to tap into what their strengths are. The Prophet ﷺ was really, really incredible at tapping into the strengths of the Sahaba and the people around him, right? He didn't try to mold people into things they were not. He recognized what their talents were, what their strengths were, and he encouraged them to flourish in those areas. And so in taking from that beautiful teaching, it's important for us to also think about that as we think about young people in our communities, right? How do we encourage the strengths in our community, right? Or do we tell our young people that, you know, there's this particular path that I need you to walk and this is the only path, right? Or do we recognize that each of them come with their own gifts, their own skill sets, and encourage that? And so only when we do that do we begin to see a community that's flourishing, a community that has professionals from all walks of life, and people who are engaging in activities, in work, in meaningful, you know, a thought that ends up being very beneficial to the strength of our community. So I encourage, again, as we're thinking about what it means to engage and to engage meaningfully, I encourage us to think about our young people and to foster the gifts that they've been given by Allah subhanahu wa ta'ala, and to allow those gifts to flourish, to have meaningful conversations with our youth, with the young people in our lives, and to figure out what they, you know, what's important to them, right? And how we can support them in their journeys of kind of fostering the talent that they've been given. And so as we kind of think about, you know, our young people, as I shared, the IFT is an important pillar of our community. It's an important place for our young people to come together, to express who they are, and a space where they feel like they can be themselves, right? And so I encourage us to think about how we can continue to support this important pillar of our community. When we walk through the doors at IFT, it's not only a beautiful building, but there's also a beautiful sense of community, right? There's a ton of programming that takes place at IFT. And of course, we need to think about what that means to invest in this space for generations to come, so that there's an opportunity for the generations after us to experience, you know, the barakah and the blessings of this place. And so again, I encourage you to donate, to think about how you can continue to support the incredible work of IFT, the management, the volunteers, the board of directors, and of course the number is on the screen. So please do think about how you can contribute. And alhamdulillah, it is the blessed month of Ramadan. So all your contributions are multiplied in your books of good deeds. So please do give generously. Assalamu alaikum.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب به ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم.
الله 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 الله.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yusuf Badat here on behalf of the Islamic Foundation of Toronto. When it comes to our worship in the masjid, it reminds us about the very first house of Allah subhanahu wa ta'ala that was ever established. And that is, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ. The Almighty Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the very first house that was ever established for his worship, and that is in Mecca at the Kaaba. So indeed, if we look at the humble beginnings of the Kaaba, we find that the very first time it was ever established, it was instructed to the angels for the angels to establish and build the Kaaba. Then afterwards, Adam alayhi salatu wasalam, and then one of the greatest personalities was the Prophet Ibrahim and Ismail alayhi salatu wasalam, who built the Kaaba and the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And it was at a time where the space was empty, it was an empty valley, and there was no one there, and they made the efforts, and after making the efforts, they made dua, they supplicated, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. O Allah, accept this from us. And their efforts were so profound that today we find the Kaaba, everybody longs to go and everybody wants to go. Now, there is an authentic narration wherein the Prophet Muhammad, peace and blessings upon him, speaks about the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala descending at the Kaaba. And that mercy then is distributed across the world to every masjid that is existing on the face of this earth. And that's why when we enter the masjid, what do we say? We say, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. O Allah, open the doors of your mercy for me. So what mercy are we referring to? We are referring to the mercy that has come down at the Kaaba. And now, just like a lighthouse, the light, it rays, it sends down its beams in every direction. That mercy that descends at the Kaaba, it is now distributed to every masjid across the globe. And every time we enter the masjid, then we are able to access that mercy. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Wallah, open the gates of your mercy for me. That mercy we are referring to is also the mercy that has descended from the Kaaba and reached to our masjid where we are attending. The Islamic Foundation of Toronto, as mashallah, all of you know, is one of the oldest organizations and masjids in Toronto, serving for over 70 years. And the current site of Islamic Foundation of Toronto has existed here for a number of years and serving the community for all of these years. With the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and with your generous support, these services continue, whether it be the educational services of empowering our youth with the knowledge of Islam. We have Huffaz who are in the Hifz program here at the Islamic Foundation of Toronto. Approximately between 300 to 500 Huffaz who have memorized the entire Quran from the Islamic Foundation of Toronto Hifz program. And every Ramadan, these Huffaz, they are across North America leading Taraweeh prayers for communities in Canada and also America. And we have also situations where a few of them have traveled abroad to different countries outside of the North America's region, and they are leading Taraweeh. So this program, the Hifdh program, is chaired by our Imam Qari Yunus Ingar and his team of expert teachers who are experts in pronunciation, in memorization, and they are doing an amazing job. We hold the Qiraat conference every year that is related to the Quran. So this is just one aspect of a service that takes place here at the Islamic Foundation of Toronto. And with your support and your contributions, the message of the Quran, the education of the Quran, the teachings of Islam, they continue with your support and your contributions. So this is the month of Ramadan. The Prophet ﷺ was asked, when is the best time to give charity? And according to this narration, the Prophet Muhammad, peace and blessings upon him, replied and said, in the month of Ramadan. So let us support the Islamic Foundation of Toronto by giving in small and large amounts. Visit the Islamic Foundation of Toronto. You yourself contribute. Have your family.